اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام قیام سے قیام تک میں آج پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ان علماء اور دانشور حضرات کے سلسلے میں گفتگو کریں گے جنہوں نے جناب مختار کے سلسلے میں قلم اٹھایا ہے، یا کوئی تالیف یا تصنیف کی ہے، کوئی کتاب لکھی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا نجیب الحسن صاحب۔ آئیے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مولانا سے چند سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، آپ کا سوال بہت مناسب ہے کہ جناب مختار کی شخصیت کے سلسلے میں علماء نے جو قلم فرسائی کی ہے، جو کچھ بیان کیا ہے، اس سے پہلے اگر ہم اس بات کو نظر میں رکھیں کہ ہمارے ائمہ نے جناب مختار کے کردار کو کس انداز میں پیش کیا ہے، اپنی روایات کے ذریعے سے کس طرح سے پہچانوایا ہے، تو یہ بہت بہتر رہے گا، اس لیے کہ ہمارے علماء بھی تابع ہیں انہی
ائمہ کے فرمودات
ائمہ علیہ السلام کے۔ آپ دیکھیں کہ مختلف روایات ہیں جناب مختار کے سلسلے میں، مذمت میں بھی کچھ روایتیں ہیں اور مدح و ستائش میں تمجید کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے۔ وہ روایات زیادہ ہیں جن میں تعریف کی گئی ہے، وہ روایتیں بھی ہیں جن میں کہیں کہیں منقصت کا کہیں پہلو آتا ہے، اگرچہ پھر علماء نے اس مسئلے کو حل کیا اور بیان کیا کہ تمام روایتیں جو مذمت میں کہیں وارد ہوئی ہیں یا تو تقیہ کی بنیاد کے اوپر ہیں یا اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ دوسرے لوگوں نے من گھڑت چیزیں جناب مختار کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے بیان کی ہیں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے امام علی علیہ السلام سے لے کر امام صادق علیہ السلام تک، مسلسل کبھی جب کوئی اس طرح کا موضوع سامنے آیا جناب مختار کے سلسلے میں تو ائمہ نے بیان کیا ہے۔ خاص طور پہ امام علی علیہ السلام کا آپ کو اپنے زانوں پر بٹھانا اور یا کئیس کہہ کے خطاب کرنا اور اس طرح سے محبت کے ساتھ پیش آنا، اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بچپن ہی سے ایک نظر تھی ائمہ علیہ السلام کی جناب مختار کے سلسلے میں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مثلا امام جناب امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ بعض مرتبہ جناب مختار نے کچھ ہدایا بھیجے ہیں، کچھ تحائف بھیجے ہیں، تو ایک بڑی چیز ہے اگر کوئی کسی کو کچھ بھیجتا ہے اور سامنے والا انسان جس کو کچھ بھیجا جا رہا ہے اگر اس سے ناراض ہے یا کسی بات سے خفا ہے یا اس کے کردار کو پسند نہیں کرتا تو وہ اس کے بھیجے ہوئے ہدیے کو یا تحفے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ لیکن عمر ابن علی سے یہ روایت ہے کہ مختار نے 20,000 دینار امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے اور آپ نے انہیں قبول فرمایا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو رقم جناب مختار نے بھیجی، اگر امام سجاد علیہ السلام کی نظر مثبت نہ ہوتی یا جناب مختار کو وہ ایک دوسری نظر سے دیکھ رہے ہوتے کہ گویا ہمارے اہداف کے یا معرفِ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہے ہیں جناب مختار، تو قطعاً اس بھیجے ہوئے ہدیے کو امام قبول نہ
نہیں کرتے۔ جیسے کہ تاریخ میں ہمیں مختلف شواہد ملتے ہیں کہ بادشاہوں کے بھیجے ہوئے
جی
جو تحفے تحائف ہیں وہ اماموں نے واپس کر دیے،
نہیں قبول کیے۔ حتیٰ نہ صرف اماموں نے بلکہ بزرگ اصحاب کے سامنے بھی اگر کچھ بھیجا، جیسا کہ جناب ابو ذر کا معروف واقعہ ہے کہ خلیفہ سیوم نے کچھ بھیجا تھا اور اس شرط پہ بھیجا تھا کہ غلام سے کہا تھا کہ تم اس کو پہنچاؤ اور اگر وہ قبول کر لیں تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور وہ اصرار کر رہا تھا کہ قبول کر لیے، تو جناب ابو ذر نے یہی کہا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو غلام بنا کر میں تمہیں آزاد کر دوں، یعنی نہیں قبول کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ جناب مختار کے سلسلے میں ملتا ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ خدا مختار کے اوپر رحمت نازل کرے، ظاہر امام صادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ انہوں نے بنی ہاشم کے گھروں کو تعمیر کیا، تو اس انداز میں خطاب کرنا یہ جناب مختار کی شخصیت اور ان کے صادق ہونے کو، اپنے جذبوں کے اندر صادق ہونے کو، جو جذبہ انتقام تھا، इसको बताता है। कश्शी ने मोहम्मद इब्ने मसूद से रिवायत की है कि जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और पिसर साद कस्सर आया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास, तो आपने सजदा किया और सजदा करने के बाद दुआ की कि परवरदिगार मुख्तार के ऊपर रहमत नाजिल कर। उसके अलावा फिर रिवायत में है कि अब्दुल्ला इब्ने शरीक से रिवायत है कि मैं ईद कुर्बान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास था, उनकी खिदमत में हाजिर था और आप तकिया लगाए हुए गोया बैठे हुए थे, और मैंने देखा कि लोग वहाँ पर आ रहे हैं आपसे मुलाकात के लिए, मैं भी आके बैठ गया। अहले कूफा से एक शख्स आया और आने के बाद उसने इमाम से मिलना चाहा। इसी तरह की मिलती जुलती एक रिवायत यह है कि हज का मौका था, इसी तरह से चूँकि मिलती जुलती रिवायत है इसलिए उसको दोनों को एक कर रहे हैं कि हज का मौका था, और बयान करते हैं कि इमाम तशरीफ़ फरमा थे कि इंतज़ार कर रहे थे कि कोई हो जो मसलन सर मुंडे और गोया इमाम सर तराशना चाहते थे। उस मौके पर देखा कि एक शख्स वहाँ पे खड़ा हुआ है, इमाम ने सर उठा के देखा तो वो करीब आना चाहता था और उसने कहा कि मौला मैं हूँ अबू मोहम्मद हकम बिन मुख्तार। तो इमाम ने बहुत ही तपाक से उसका इस्तकबाल किया बढ़कर और उसे बिठाया, और बिठाने के बाद फिर गुफ्तगू शुरू हुई। तो गोया ये जनाब मुख्तार के बेटे थे, इमाम बहुत खुश हुए। जनाब मुख्तार के बेटे ने अबू मोहम्मद ने कहा कि मौला क्या आपने इन खबरों को सुना है जो मेरे वालिद के सिलसिले में मशहूर हैं? कहा कि क्या बात है? कहा मेरे वालिद को कुछ लोग कज़्ज़ाब करके खिताब करते हैं। इमाम ने कहा सुभान अल्लाह, वो मुख्तार के जिन्होंने गोया हमारे जद के कातिलों से इंतकाम
इंतकाम लिया।
लिया, उनका किसास किया, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि वो कज़्ज़ाब हैं, और उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जिन्होंने न सिर्फ ये कि हमारे जद के कातिलों को से इंतकाम लिया बल्कि गोया हमारे लिए एक ऐसी फ़िज़ा फराहम की कि जो करबला के बाद एक ऐसी फ़िज़ा फराहम हो गई थी कि लोग दूर हो गए थे, उसके दरमियान जनाब मुख्तार एक पुल बने और उन पर लान तान किया जाता है, उनको
बुरा
कज़्ज़ाब कहा
भला कहा
जाता है,
जाता
बुरा भला कहा जाता है कि जिन्होंने माल से हमारी मदद की,
है।
माल से हमारी मदद की, हमारे घरों को बनवाया, बनी अकील के घरों को तामीर कराया, बनी हाशिम के घरों को तामीर कराया। तो ये जो इमाम का तर्ज़ गुफ्तगू है, या सुदैर से रिवायत है कि इमाम सादिक ने फरमाया वाज़े तौर पर मुख्तार के ऊपर लान तान मत करो, चूँकि उन्होंने कातिलिन हुसैन के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया है। या मुंसिर इब्ने जारूद ने इस चीज़ को बयान किया इमाम से कि फरमाया कि बनी हाशिम की ख़वातीन ने उस वक्त गोया हिना लगाई कि जब करबला के वाक़े के बाद जनाब मुख्तार ने
जी
अपना यह अमल शुरू किया। तो ये तमाम इस तरह की रिवायतें, इनको अगर देखा जाए तो इससे ये मालूम होता है कि कतन जनाब मुख्तार के सिलसिले में नज़र
उलमा की
कोई
नज़र जो है वो मस्बत रही है,
आइम्मा अलैहिस्सलाम
आइम्मा
की
अलैहिस्सलाम की
मुस्बत नज़र
नज़र
रही
जो
है
है, हमारे
उन।
इमामों की नज़र
जी
वो मस्बत रही है। अब हम आते हैं उलमा की तरफ के उलमा ने या दानिश्वर हजरात ने किस किस अंदाज़ में जनाब मुख्तार
जी
पे अपना कलम उठाया है और किस तरह मदहसराई की है जनाब मुख्तार की, क्या मिलता है हमें तारीख में इस सिलसिले में?
उलमा के दो गिरोह हैं, एक ने थोड़ा एहतियात के साथ कदम रखा है और कुछ लोगों ने बिल्कुल वाज़े तौर पर साफ और शफाफ तौर पर जनाब मुख्तार की शख्सियत को पेश किया है कि एक अजीम इनकलाबी मुतहर्रिक वो शख्सियत थी कि जिसने मकासद अहले बैत अलैहिस्सलाम की तकमील के लिए कदम आगे बढ़ाया। महासरीन में आयतुल्ला खुई ने इस सिलसिले में बहुत कोशिश की और उन रवायात को जमा किया है कि जिनमें कहीं से जनाब मुख्तार की मसलन मनकसत हो रही है, मजम्मत हो रही है, फिर उस रिवायत को परख कर सामने पेश किया है कि इस रिवायत की हकीकत क्या है। मसलन जो एक रिवायत मुख्तार के चचा के सिलसिले में और मुख्तार के सिलसिले में है कि मदायन में मुख्तार ने
इमाम हसन अलैहिस्सलाम को
के
हवाले करने
सिलसिले
के
में,
लिए
हाँ
गुफ्तगू है।
उस रिवायत को आयतुल्लाह खुई ने इसकी तहकीक की, इसका तजिया किया, उसके बाद कहा कि ये रिवायत मुरसला है, ज़यीफ़ है। उसके बाद आगे बढ़कर कहते हैं कि और अगर इसको फ़र्ज़ आप ये करें कि सही भी मान लें तो यकीनन ये जनाब मुख्तार इम्तहान ले रहे थे अपने चचा
अपने
से।
चचा का। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं नाज़रीन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मौलाना नजीबुल हसन साहब। हमारी बात चल रही है वो उलमा और दानिश्वर हज़रात जिन्होंने मुख्तार और उनके क़याम के सिलसिले में अपना कलम उठाया है, तहरीरें लिखी हैं, तसानीफ़ की हैं। आइए अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उलमा की हमारी बात चल रही थी कि
आयतुल्लाह
आयतुल्ला खुई ने
खुमैनी
जो जनाब मुख्तार के इस क़याम का दिफा किया है और भरपूर अंदाज में इस सिलसिले में
जी उन रिवायात की का आपने तजिया किया है कि जो जनाब मुख्तार के सिलसिले में उसे मजम्मत
जी
करी, मसलन मिसाल के तौर पर उनमें वो रिवायत जो हमने अभी अर्ज किया कि जनाब मुख्तार के सिलसिले में कि आपने अपने चचा से कहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मदाइन में जब आपके घर पे आए गए तो मसलन पकड़ के हवाले कर दें अमीर शाम के, तो आगा खुई फरमाते हैं कि ये कतन ये रिवायत ज़यीफ़ है और इसकी इसका ज़ाफ़ इस रिवायत के मुरसला होने की बुनियाद के ऊपर इसके हलके वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, तमाम हलके असल तक नहीं पहुँच रहे हैं बल्कि बीच में राबता टूट जा
यानी
रहा है,
जंजीर टूटी हुई
जंजीर
नजर आती
टूटी हुई
है
है गोया
आपस में
जी।
राब्ते की।
इसके अलावा फिर आप कहते हैं कि अगर आप इसको मान भी लें तो यानी इस रिवायत को अगर आप मान भी लें तो यकीनन जनाब मुख्तार ने गोया इम्तहान लेना चाहा है अपने चचा का, और इसी चीज़ को अल्लामा सैयद मोहसिन आमुली ने इसी को बयान किया है कि ज़ैल रिवायत में वो कहते हैं आगे जाके खुद है खुद जनाब मुख्तार ने ये कहा इसमें कि मैंने ये चाहा कि मैं अपने चचा का इम्तहान लूँ, ये देखना चाहते थे अपने चचा को कि वो क्या नज़र दे रहे हैं, चूंकि हालात बहुत पेचीदा थे, बहुत सारे ऐसे अफराद जो करीबी थे बज़ाहिर करीब थे लेकिन दर हकीकत अमीर शाम ने उनको खरीद लिया था, जैसे उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास 12,000 का लश्कर लेके उन तक मिल गए थे, अमीर शाम से जाके मिल गए थे, और जबकि इमाम ने कमांडर बनाया था अपनी रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर, लेकिन आप देखिए रिश्तेदारी और लियाकत की बुनियाद के ऊपर जिसे बनाया वो जब ऐसा हो रहा है तो अब मुख्तार जैसी शख्सियत ये देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मसलन हमारे चचा कुछ और ख्याल रखते हों, इसलिए उन्होंने ये बात करके देखी थी इसको बयान किया कि रिवायत के ज़ैल में ये बात है। उसके अलावा शेख तूसी, अल्लामा हिल्ली, इब्न नुमाय हिल्ली, अल्लामा मामकानी, अल्लामा अमीनी, आयतुल्ला खुई तो हमने बयान ही किया, ये तमाम वो शख्सियतें हैं कि जिन्होंने जनाब मुख्तार के सिलसिले में उनकी शख्सियत के सिलसिले में लिखा है कि जो कुछ गुबार पड़ा हुआ है इस शख्सियत के ऊपर बाज़ रिवायतों की बुनियाद के ऊपर वो ज़यीफ़ हैं, वो सही नहीं हैं, हम उन्हें तस्लीम नहीं करते हैं, और मुकम्मल तौर पर अगर आप एक तज़िया करें उलमा का तो अभी तक किसी भी बुज़ुर्ग आलिम दीन ने या फ़कीह ने या रिजाल शनास ने जनाब मुख्तार की मुतलक मजम्मत नहीं की है, यानी बतौर मुतलक के बिल्कुल किसी भी एतबार से जनाब मुख्तार यानी सही नहीं थे या उनका क़याम के अंदर कोई मुश्किल थी या इमाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई कदम उठाया या शख्सियत जनाब मुख्तार की बेहतर नहीं थी या किरदार अच्छा नहीं था, बल्कि बयान ये करते हैं उलमा कि मुख्तार के हुस्न हाल के लिए बेहतर जनाब मुख्तार के बेहतर किरदार के लिए एक कामिल शख्सियत के लिए इतना बेहतर है कि उन्होंने ये जुमला आगे खुई का है कि उन्होंने अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के दिलों को खुश किया,
और उनके
इतना
खून का इंतकाम
उनके
लिया।
खून का इंतकाम लिया। फिर कहते हैं कि बल्कि खुद आगे खुई कहते हैं कि बाज़ रिवायतों से ये साबित होता है, ये कोई मामूली आलिम नहीं कह रहा है, आगे खुई जैसा रिजाल शनास कह रहा है
बल्कि अभी तक जितने नाम आपने गिनवाए इनमें से कोई भी ऐसा आलिम दीन नहीं हो जिसको लोग ना पहचानते हों
ना
ना जानते
पहचानते।
हों।
आगे खुद कहते हैं कि बल्कि बाज़ रिवायतों साबित होता है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इजाज़त से आपने क़याम किया था, इस हद तक है कि ख़ास इजाज़त हासिल थी। हाँ, अब एक मंजिल पर आकर जो जहाँ पर मैंने कहा कुछ लोगों ने एहतियात की है, मसलन अल्लामा मजलिसी, अल्लामा मजलिसी ने दोनों तरह के रिवायतों को नकल किया है, ज़ईफ़ और जो रिवायतें जनाब मुख्तार की मदा में हैं उनको नकल किया है। और नकल करने के बाद आप कहते हैं कि इन सब को देखते हुए हम अगर ये कह भी दें कि अपने दीन और ईमान में जनाब मुख्तार मसलन ज़ईफ़ थे, तो भी मैं ये समझता हूँ उन्होंने जो काम किया उसकी बुनियाद के ऊपर उनको निजात मिल जाएगी,
बिल्कुल
उन्होंने
सही
भी
बात।
वो ये रास्ता में निकाला है। लेकिन आयतुल्ला खुई और इब्न नुमा बहुत वाज़ेह तौर पर कहते हैं, बल्कि ये इबारत उनकी कि युज़हरो मिन बाज़ रिवायात अन हाज़ा काना बिइज़्न खास मिन सज्जाद अलैहिस्सलाम। ये कहते हैं कि ये बाज़ रिवायात से नतीजा निकलता है, ज़ाहिर होता है कि जनाब मुख्तार का ये अमल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खास
खास
इजाज़त से,
हिदायत और इजाज़त के
खास
बिना।
इजाज़त से था। फिर उसमें आप देखें कि मसलन जैसा कि हमने बयान किया, इब्ने अब्बास, अल्लामा इब्ने नुमा, मुक़द्दस अर्दबीली, शेख अब्बास क़ुमी, मिर्ज़ा मोहम्मद इस्तराबादी, अल्लामा अमीनी, हत्ता अल्लामा अमीनी, अल्लामा बाकिर शरीफ क़रशी, इब्ने ताऊस, ये तमाम अफराद इस चीज़ को बयान करते हैं कि जो रिवायतें जनाब मुख्तार की मदह में आई हैं वो सब के सब तरजीह रखती हैं उन रिवायतों पर कि जिनमें जनाब मुख्तार की मजम्मत हो रही है। मसलन इब्न ताऊस ने हल्लुल इश्काल फी मारफत रिजाल किताब है, उसमें इस चीज़ को बयान किया कि जो रिवायतें मदह में हैं जनाब मुख्तार की उनके अंदर रुझान है। और इब्न नुमा मसलन इस हद तक बयान करते हैं कि दर हकीकत जनाब मुख्तार उन मुजाहिदीन में हैं कि जिनके लिए परवरदगार ने जिनकी मदह की है, जिनकी सताइश की है, और उनकी मजम्मत में जो रिवायतें आई हैं उन्हें गढ़ा गया है, वो जाली रिवायात हैं। और दुआए इमाम सज्जाद जनाब मुख्तार के शामिल हाल रही है, और ये एतकादी एतबार से हमारे लिए सही नहीं है कि एक इमाम मासूम किसी शख्स के लिए दुआ
दुआ
करे।
कर रहा है और हम उसको ये कहें कि ये कज्जाब है और ये
जी
इस तरह जो है वो बग़ैर इमाम के इज़्ज़त। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये पैदा होती है कि अगर उलमा को इख्तलाफ भी होगा जनाब मुख्तार से, तो कुल्ली तौर पे इनकी शख्सियत से तो इख्तलाफ हमें नहीं मिलता तारीख में, कि पूरी शख्सियत से, पूरे किरदार से और इनके पूरे
नहीं, कतन
एक्टिविटी से जो है वो उनको इख्तलाफ।
हमने बयान किया कि नहीं, यही जो जो चीज़ आप कह रहे हैं कि मुतलक तौर पर कहीं नहीं मिलता, अगर है भी कहीं तो बाज़ जुज़ी मवारिद। मसलन बाज़ लोगों ने कहा कि ठीक है जनाब मुख्तार अच्छे आदमी थे, उन्होंने कादरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कयास लिया, इंतकाम कसास लिया, उनसे इंतकाम लिया, सब कुछ सही है, लेकिन जब हुकूमत को ले लिया था तो फिर मसलन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले क्यों नहीं किया। इस तरह के इश्काल ज़रूर मिलते हैं। लेकिन आप देखें कि अल्लामा इब्ने दाऊद हिल्ली इन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर इस चीज़ को बयान किया है कि जनाबे मुख्तार के सिलसिले में जहाँ कहीं भी अगर कहीं मजम्मत या ताने वाली बात है तो कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि जनाबे मुख्तार की शख्सियत इससे जुदा है और उनके लिए इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। अल्लामा इमाम कानी यहाँ पर फरमाते हैं कि हम ये अकीदा रखते हैं, ये एतकाद रखते हैं कि जनाबे मुख्तार का न सिर्फ क़याम, यानी देखें कुछ लोगों ने अगर जो एतराज़ भी किया है तो हुकूमत पे किया है, अल्लामा
सही,
इमाम कानी कहते हैं कि हम ये एतकाद रखते हैं कि हुकूमत जनाबे मुख्तार और क़याम दोनों इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इजाज़त से है, इमाम की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास इसकी चार दलीलें हैं, चार दलीलें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कहते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इजाज़त से था। इनमें पहली दलील वो रिवायतें हैं कि जिनमें ये कहा गया है कि हुसैन इब्ने अली, क्योंकि इस तरह की रिवायतें हैं, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम जनाब मुख्तार को आग से निकाल लेंगे, एक इस रिवायत को पेश करते हैं। फिर वो उसकी तौजीह देते हैं इसलिए कि कहते हैं हमारा अकीदा ये है, हम इमामिया अकीदा रखते हैं कि अगर कोई विलायत का अकीदा नहीं रखता है तो फिर वो आग में जलेगा। लेकिन अगर जनाब मुख्तार इतना अशरी न होते तो फिर ये क्या है कि इमाम हुसैन तो आग से निकाल लेंगे। निकाल
सही
लेने का मतलब यह है कि वो ये अकीदा भी उनका सही है और ज़ाहिर है कि किरदार अगर सही नहीं होगा तो कैसे हो सकता है। फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को दूसरी दलील देते हैं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को हदिया भेजना। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद हनफिया को मानते थे, तो अल्लामा मामेगानी ये कहते हैं कि अगर जनाब मोहम्मद हनफिया को अपना इमाम मान रहे होते तो हदिया इमाम सज्जाद के पास क्यों भेज रहे
क्यों
हैं,
भेजते?
हदिया मोहम्मद हनफिया के पास भेजना चाहिए। लेकिन इमाम सज्जाद के पास भेजना इस बात की दलील है कि इमाम मान रहे हैं और इमाम का उसको रद्द ना करना दूसरी बात है,
कबूल भी कर लिया
कबूल
इमाम
भी
ने
कर
उसको।
लिया इमाम ने। फिर तीसरी चीज़ कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने या कईस करके जनाब मुख्तार
खिताब
को
किया
खिताब
उनको
किया था
कि
और इससे इस चीज़ को बताया था कि ये शख्सियत एक अजीम शख्सियत है
कितनी अजीम
और
शख्सियत है।
कितना बड़ा एक कारनामा इसके ज़रिए से रूनुमा होने वाला है, तारीख रकम होने वाली है। फिर कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि मीसम जैसी शख्सियत जनाब मुख्तार के काम से बाखबर हो और इमाम अली अलैहिस्सलाम मसलन बेखबर हो। उनका मतलब यह कि या कईस जब आपने बयान किया तो उस चीज़ यानी एक तनाजुर में देख रहे थे, दर हकीकत मुस्तकबिल के तनाजुर में कि क्या होने वाला है उस चीज़ को बयान कर रहे थे। फिर चौथी चीज़ कहते हैं कि हसन बिन जैद की रिवायत है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मुख्तार के लिए नेक जजा की दरख्वास्त की। और अब्दुल्लाह इब्ने शरीक की भी रिवायत है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदावंद मुताल मुख्तार के ऊपर अपनी रहमतें नाजिल करें कि उन्होंने गोया हमारे दिल को ठंडक पहुंचाई है। इसका मतलब यह है कि ये जितनी भी चीज़ें हमने जो अल्लाह मोहम्मद कानी ने बयान की, ये चार चीज़ें जो हम बयान कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुख्तार ने एक अच्छा अमल अंजाम दे दिया, कातिल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतकाम ले लिया बस, नहीं बल्कि उनका किरदार भी काबिल कबूल है और अइमा की नज़र में उनके किरदार के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जाए कि मसलन ये सही नहीं थे। और बल्कि यहाँ पर अगर हम इसको बयान करें कि अल्लामा अमीनी ने न सिर्फ ये कि उनके सराहा है बल्कि इखलास के साथ साथ इस चीज़ को बयान किया है कि जनाब मुख्तार का क़याम दर हकीकत क़याम अदल है और इसीलिए शहीद अव्वल ने अपनी किताब मज़ार में जनाब मुख्तार की ज़्यारत को नकल किया है कि जिस ज़्यारत को अल्लामा अमीनी ने भी फिर बयान किया है। और अल्लामा अमीनी साहिब अलग़दीर जैसी शख्सियत है, वो अगर शहीद अव्वल से इस्तनाद करते हुए अगर एक ज़्यारत को लिख रहे हैं तो ये
वो
मामूली बात नहीं है।
मुस्तनद और मामूली बात नहीं है। बहरहाल हमें तारीख में ऐसी शख्सियात भी मिलती हैं कि जिनका माजी बहुत बुरा था, लेकिन आखिरी वक्त में वो बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत अच्छे तरीके से आइम्मा के साथ मुलहक होते हुए नजर आए। बाज़ अफराद हमें ऐसे भी मिलते हैं कि जिनका माजी बहुत अच्छा था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने अपने इमाम से मुंह मोड़ लिया और अपनी मुश्किल और मुसीबतों में फंसते चले गए। लेकिन ऐसी किसी भी शख्सियत, किसी भी शख्स की शख्सियत जनाब मुख्तार की शख्सियत से मेल नहीं खाती, क्योंकि इनका माजी भी दरख्शां था और जो काम इन्होंने आइम्मा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में किया वो भी एक बहुत अजीम हैसियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पे SMS और ईमेल एड्रेस मौजूद है, अपने सवालात हमें लिख के भेजिए ताकि हम उलमाए कराम से आपके सवालात के जवाब ले सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।